نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير. دل کی اصلاح، اس میں سے ٹاپک چل رہا ہے ورع، اور آج ہم اس میں سے کریں گے ورع مشروع اور ورع غیر مشروع میں تقابلی موازنہ، کتاب کے حساب سے پیج نمبر 661 کا بالکل آخری پیراگراف ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے کہ کیا وہ اسباب ہیں جس سے ورع ہوتا ہے، اور ورع کیا ہے؟ تقوی کی بہترین کیفیت، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائپ آف تقوی، یا کسی بھی چیز کی اگر آپ ایک چوٹی کہتے ہیں، مختلف درجات ہیں، تو انتہائی تقوی کا لیول کیا ہوتا ہے کہ انسان حرام تو حرام، مشتبہ اور مکروہات سے بھی بچے. یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ ڈر کی کیفیت یا ڈر کی نفسیات کو ہم اور بڑھا لیں تو وہ تقوی میں بدلتی ہے. اب دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسی ڈر کے نام پر کبھی کبھی غیر شرعی کام کرنے لگتے ہیں. یعنی آج کا ٹاپک کیا ہے کہ شرن جواز کا حکم رکھنے والے ورع کا بیان. بعض دفعہ لوگ تقوی کے نام پر اور حفظ ما تقدم کے نام پر بعض اوقات کچھ ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. تو اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ شرن جواز کا حکم رکھنے والے ورع مشروع کا بیان، یعنی شریعت کس چیز کو قبول کرے گی اور کس چیز کو رد کرے گی. یہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، اصلی اور نقلی نوٹ کا یہی فرق ہوتا ہے کہ اصلی نوٹ کو حکومت قبول کرتی ہے، بینک قبول کرتے ہیں، اور نقلی کو نہ صرف یہ کہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے بلکہ اس کو پھر قید یا پھر سزا بھی دی جائے گی کہ آپ نے کاپی کرنے کی کوشش کیوں کی. دنیا میں آج کاپی رائٹس کا نام ہے اور بہت کچھ. تو قیامت کے دن ہمارا وہی عمل قبول ہوگا جو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی گائیڈ لائن کے مطابق کیا ہوگا. آپ کی دیوی گائیڈ لائن کے مطابق کیے ہوئے عمل ہی کو قبولیت ملے گی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہیں، یعنی اب ان کا قول ہم پڑھیں گے اس بارے میں. ورع مشروع، شرعاً اس ورع کو کہا جاتا ہے جس کے انجام کار، یعنی آپ کوماز لکھ کر ڈالا کریں تاکہ آپ کا ذہن اس جملے کے ساتھ چلے، جس کے انجام کار اور نتیجے سے اندیشہ اور خوف محسوس کیا جائے. یعنی انجام کا ڈر ہوگا کیا، یہ جو کھانے لگی ہوں اس کا انجام کیا ہے، جو دیکھنے لگی ہوں اس کا انجام کیا ہے، جو بولنے سوچنے لگی ہوں اس کا انجام کیا ہے. یہ ایک ایسی بڑی روک ہے کہ جب یہ روک لگ جاتی ہے نا، تو پھر انسان کو دنیا کی عدالت، لوگوں کی باتیں اور اس کی اور اس کی باتوں کا خوف نہیں رہتا. جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو پھر ہر بندے کو یہ ضرورت نہیں رہتی کہ جا کر کوئی پولیس مین ہاتھ روک کر بتائے کہ تم نے سپیڈ تیز کی ہے. تو بیسیکلی انسان برے انجام سے بچنا چاہتا ہے. یہ وہ ورع ہے جس کی حرمت معروف اور جانی پہچانی ہو، اور جس کو حرام قرار دینا باعث شبہ و بدگمانی ہو، جس کے ترک کرنے میں اس کی انجام دہی سے زیادہ خرابی کا خدشہ نہ ہو. کیا پتہ چلا؟ یعنی شرع مشروع کیا ہے؟ وہ ورع جس کے انجام کار اور نتیجے سے اندیشہ اور خوف محسوس کیا جائے. پہلی بات تو واضح ہے، یعنی انسان تقوی کے نام پر کوئی بھی کام کر رہا ہے تو یہ دیکھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ اس کی حرمت معروف اور جانی پہچانی ہے، شروع سے آتی جا رہی ہے. مثلا شراب کی حرمت معروف بھی اور جانی پہچانی ہے. اس کو حرام قرار دینا شبہ یا بدگمانی ہو، یعنی کوئی کہتا ہے کہ بدگمانی ہے میری، شبہ ہے. نہیں، غور سے دیکھیے نا اس جملے کو کہ یہ وہ ورع جس کی حرمت معروف اور جانی پہچانی ہو. اتنی بات تو واضح ہے نا. اس کو حرام قرار دینا باعث شبہ ہو، اتنے کو دیکھیے، اور بدگمانی ہو، جس کے ترک کرنے میں اس کا انجام دہی سے زیادہ خرابی کا خدشہ نہ ہو. ابھی آپ مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو پھر یہ کوٹیشن دوبارہ دہرواؤں گی. چند مثالیں دیکھتے ہیں، یعنی اس قسم کے ورع اور پرہیزگاری کی پیچھے بھی باتیں ہوئی، ابھی بھی دیکھتے ہیں. ورع غیر مشروع کا بیان، یعنی سادی سی بات ہے، ورع مشروع وہ ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، جس میں تقوی ہی کے وہ سٹیپس ہوں جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیے گئے ہیں، اور اس کے بارے میں انسان اپنی مرضیاں نہ کرے. या अपने गुमान, मेरा ख्याल ये है, जैसे आज कोई कह दे कि मेरा ख्याल है कि आज के दौर में गाय का गोश्त हराम है, मैं नहीं खाता, खाना ही नहीं चाहिए, इसमें ये है, या कुछ इसी किस्म की और चीज़ें जो अमूमन आप इधर उधर से देखते हैं। गैर मशरू को समझेंगे तो फिर और बात वाजह होगी। वराय गैर मशरू का बयान, कब कोई वरा गैर शरीय हो जाता है, गैर मशरू मीन शरीयत से खिलाफ। नंबर एक, जब गलू और हद से तजावुज़ किया जाए। बस लोग वरा और परहेजगारी में हद से तजावुज़ करके मुबालगे की हदों को छूने लगते हैं और वरा को इसके मुकाम और मर्तबे से बहुत आगे निकाल कर हदूद शरिया को पामाल करने के दर पे हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी लग्जिश है, क्योंकि हर चीज़ की एक मुतय्यन हद है, और इंसान जब भी हद से तजावुज़ करके इसकी हदूद शरिया को पामाल करना शुरू कर दे, मसलन ख़राब कर दे, और इसके हदूद अरबा, चारों हदें यानी बाउंड्री वॉल जिसको आप कहते हैं, इसके हदूद अरबा की चार दीवारी से बाहर निकल जाता है, तो वह वरा गैर मशरू की इंजामदही का इर्तकाब करने वाला गिना जाता है। इस बुनियाद पर किसी शख्स के लिए ये बात जायज़ ही नहीं कि वो वरा में मुबालगा आमेजी करे या इसमें हद से तजावुज़ करते हुए ज्यादती और नुकसान का शिकार हो। बात समझ गए? किसी भी चीज़ की किल्लत या कसरत उसका हुस्न ख़राब कर देती है। खाने में नमक की मिसाल बहुत आसानी से समझ आ जाती है इस बात के लिए। आप देखिए कि नमक ना डालें तो भी खाना नहीं खा सकते, और नमक 2 की जगह 6 चम्मच डाल दें तो भी नहीं खा सकते। हमारी शरीयत बहुत बैलेंस्ड है, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत कुछ रखा हुआ है। जितना ज़्यादा आप इसको इसी के रेशन प्रपोर्शन पे रखेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल के ज़रिए हमें मिल गया, दीन खूबसूरत भी रहेगा, इजी भी रहेगा। नमक कम हो तो भी आप थोड़ा सा खाकर छोड़ देंगे, बहुत तेज़ होगा तो शायद 2 लुक्मे भी ना खा सके। इसी तरह से वही लोग हमेशा पूरे दीन को इंजॉय भी करते हैं, वो ज़िंदगी को 24/7 तक दीन वाली ज़िंदगी बनाते हैं जो नेचुरल पे होते हैं। बस आप देखिए कि घर में जिम्मेदारियां हैं, शौहर बीवी हैं, बच्चों का ताल्लुक है, घर के बुजुर्ग हैं, ये सारों को मिलाएंगे, अगर हर बंदा अपनी जगह सही तरीके पे अपने हकूक और फराइज को पा रहा है तो बहुत अच्छा घर होगा। आप एक ही तरफ झुक जाएं, सिर्फ बच्चे को ही माँ देखती रहे और मियाँ के लिए खाना भी ना बनाए, घर के बुजुर्गों की तो क्या बात करनी, तो क्या होगा, बैलेंस खराब होगा। तो असल में हमारी शरीयत तबीयत के साथ मिलती है, जिस रब ने हमारी तबीयतें बनाई उसी ने शरीयत बनाई, तो शरीयत में जो चीज़ हराम है हमारी तबीयत और एक फितरत सलीमा वाले की तबीयत भी उसको कभी पसंद नहीं करेगी। जैसे अल्लाह के नबी सल्लम ने नबूवत से पहले भी कभी शराब नहीं चखी, आपने रागो रंग की महफिलें अटेंड नहीं की। ये अलग बात है कि जब फितरत मसख होती है इंसान की, तबीयत बिगड़ती है, तो फिर उसको वही बात है कि ना खूब जो था वही खूब लगने लगता है। वरा के कुछ मसाइल जिसमें लोग गलूफ का शिकार हो जाया करते हैं, और ये याद रखिए कि ये मसला बेदीनों का नहीं है, जिनको बात लोग बड़ी ब्राउन से कहते हैं ये बेदीन ये गुनाहगार, नहीं, ये दीनदारों का है। जब दीन का एक नया नया गलबा आता है ना, बस आप तजवीद सीखने लग जाए तो आप सलाम करते हुए भी गुन्ने करेंगे, अस्सलामु अलैकुम, वो कितना बुरा लगता है, हालांकि अस्सलामु अलैकुम नॉर्मल टोन है ना। कोई भी काम जब आप नया करते हैं ना तो उसका बड़ा गलबा होता है, खाना पकाते हुए नहीं, अगर तरकीब सीखी तो हाँ इतना नहीं उतना डालना है, 10 बर्तन भर के बाद में नतीजा वही निकलना है जो बगैर कुछ किए भी था, लेकिन वो एक नया जोश होता है ना, कोई नई चीज़ खरीदें आपको उसका जोश होगा। नया नया दीन अक्सर लोगों को गलूफ की तरफ माइल कर देता है, सब छोड़ दो, मैंने नहीं खाना, नहीं मैंने अब ये नहीं खाना, मैं नेक हो गई हूँ, नहीं ये नहीं पीना, तो ये एक कैफियत होती है, और अमूमन ये जज्बाती लोगों पे, और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कह लीजिए कि नेक कहलाना तो नहीं बंदा चाहता, लेकिन नेक बनने का शौक होता है, इसमें नीयत बुरी नहीं है लेकिन तरीका बुरा है। इनमें से एक मसला ये है कि जो कि मारूफ और मशहूर है, कि बास लोग ये शोशा छोड़ते हैं कि अगर हराम माल हलाल माल से मिलकर बाहम खलत मलत हो जाए, मिक्सडअप हो जाए, तो बियाईनी ही हराम माल को हलाल माल से जुदा करना वाजिब है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स 100 रुपये का मालिक हो, इसमें से आधे यानी 50 रुपये हलाल हों और 50 हराम हो, तो इस माल का नसफ हिस्सा यानी 50 रुपये निकाल कर इस माल को हराम माल की आमेजिश से पाक साफ कर देना चाहिए। लेकिन इस बारे में बास लोगों का कहना है कि इस तरह से माल को पाक साफ करना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस माल में से ऐन हराम माल को जब तक इसे जुदा ना किया जाए तब तक वो माल हलाल नहीं होगा। यही वो गलू है जो वरा की हद से खारिज समझा गया है, क्योंकि उलमाए कराम इस माल के बारे में जिसमें हराम माल की आमेजिश हो इख्तलाफ का शिकार नजर आते हैं। बाज़ उलमा ने तो इस किस्म के माल से खाने पीने को मना किया है, इल्ला ये कि हराम की आमेजिश आटे में नमक के बराबर हो तो और बात है। इस बारे में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्ला फरमाते हैं, मुनासिब यही है कि इस माल से रुका जाए यानी इज्तनाब किया जाए, इल्ला ये कि हराम माल की आमेजिश बहुत ही मामूली सी हो या ये कि गैर मारूफ हो तो इस माल में से खाया पिया जा सकता है यानी रुकना बेहतर है। इल्ला ये कि हराम माल जो है वो बहुत ही मामूली से और या कि गैर मारूफ है यानी शिबा है, कोई भी कह लीजिए, असलाफ में बस लोगों ने इस माल में से खाने पीने की इजाज़त दी है, जिसके बारे में ये बात तो तय है कि इसमें हराम की आमेजिश है, मगर बिततहदीद यानी हद करते हुए ये बात मालूम ना हो कि इसमें हराम की आमेजिश की नौइयत क्या है। तो इस बारे में इमाम जोहरी रहमहुल्ला फरमाते हैं, ऐसे माल में से खाने पीने में कोई हरज की बात नहीं जिसमें बेआइनी हराम की तायुन ना हो। बस लोगों ने बतौर वरा इस सिलसिले में ये पहलू इख्तियार किया है, वरा यानी परहेजगारी की बुनियाद पर इस माल के बारे में ताकुफ इख्तियार किया जाए यानी खामोश रहा जाए या उससे रुक जाया जाए। चुनाचे इस सिलसिले में सुफियान सौरी रहमहुल्ला फरमाते हैं, मेरे नज़दीक ये बात नापसंदीदा है कि इस माल से मुतलकन यानी कम्प्लीटली तवर्रो इख्तियार किया जाए, तवर्रो वरा सही है, बल्कि मेरे नज़दीक इस बारे में मरगूब तरीन बात यह है कि इस माल से सिरे से सरोकार ही न रखा जाए। लेकिन अगर इस माल में से हराम माल की मिकदार निकाल कर अलग कर दी जाए तो फिर इसमें तसर्रुफ का जवाज़ है। चुनाचे इस बारे में इमाम अहमद रहमहुल्ला फैसला कुन बात कहते हुए इरशाद फरमाते हैं, अगर माल की मिकदार ज़्यादा हो तो इसमें से हराम माल की मिकदार निकाल कर अलग कर दी जाए और बाकी में तसर्रुफ किया जाए तो कोई मज़ायके की यानी हरज की बात नहीं। लिहाजा इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाने की वजह से इंसान माले हलाल में से हराम माल को निकाल देने के बाद भी हलाल माल में तसर्रुफ यानी उसको इस्तेमाल करना बतौर वरा यानी एहतियात के तौर पर तकवा की हद रखते हुए एहतियात बरते तो इसका ये तसर्रुफ जायज़ नहीं बल्कि आइन गलू है। यानी वही बात है ना कि जो चीज़ थी वो निकाल भी दी, मिसाल है 100 में से किसी को शक है कि 20 रुपये मशकूक है, 25 निकाल दे फिर बाकी आराम से ले ले, ये कहना नहीं शायद 20 तो निकाल दिए हैं शायद 30 ही ना हो। तो आप देखिए कि बाज़ दफ़ा इस तरह के छोटे छोटे कामों में उलझा कर शैतान हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से पीछे कर देता है, उसका हर बार बहुत ही ख़तरनाक है। तो लिहाजा पूरे शरह सदर के साथ सुकून के साथ देख लीजिए क्या चीज़ गलत है, बस उतनी हिस्से को निकाल दें और बाकी को इस्तेमाल किया जाए। लिहाजा इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाने की वजह से इंसान माले हलाल में से हराम माल को निकाल देने के बाद भी अगर हलाल माल में, अब देखिए अब पीछे बाकी हलाल रह गया ना, उसमें तसरफ नहीं कर रहा, उसको यूज़ नहीं करता सिर्फ इसलिए कि वरा है तो ये सही नहीं होगा। बस लोगों को इन मामलात में शक होने लगता है जिनके बारे में किसी सूरत में भी इन्हें सवाल करने का जवाब नहीं पहुंचता। क्या किसी इंसान के लिए इस बात का जवाब है कि वो किसी मुसलमान मस्तूरुल हाल यानी जिसका हाल छुपा हुआ है, जिसके बारे में किसी को शक व शुबा तक ना हो बल्कि इसकी शख्सियत साफ और शफाफ हो, उसके यहाँ बतौर मेहमान जाए और इसके यहाँ इस शख्स की मेहमानी और ज़ियाफ़त की खातिर खाने का दस्तरखान चुना जाए, इस मौके पर वो मेज़बान से ये सवाल करे कि तुमने जिस माल से ये खाना ख़रीदा है वो किस किस्म का है और तुमको ये माल कहाँ से हासिल हुआ और किस जगह से ये खाना लाए हो वगैरह वगैरह। क्या इस मौके पर इस किस्म के इस्तफसार यानी सवाल पूछने को वरा तसव्वुर किया जाएगा? क्या हकीकत में यही वरा है? नहीं, ये वरा नहीं, बल्कि इस किस्म की हरकत करने में मुसलमान भाई की दिल शिकनी और इसको तकलीफ़ देने यानी इज़ार रसानी का खुल्लम खुल्ला इर्तकाब है, क्योंकि इस किस्म का सवाल करना गोया कि अपने मुसलमान भाई पर बोख्तान लगाना है यानी इत्थामबाजी है, और मुसलमान पर तोहमत तराजी करना या बग़ैर किसी करीने के यानी दलाइल के इसको मूरदे शक करार देना यानी इस पे खाम खा कर शक करना जिस पर ना तो कोई दलील पाई जाती हो ना ही कोई गवाही का वजूद हो, किसी तरह से जायज़ नहीं, बल्कि ये तो बदगुमानी और सुए जन है, और एक मुसलमान का अपने मुसलमान भाई को ईज़ा देना हराम है, इसका किसी सूरत में जवाज़ नहीं। आपको खुलासा दे देती इस सारी बात का कि बचना है लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ना। बाज़ दफ़ा जब नया नया दीन आता है तो ये भी एक मुश्किल खड़ी हो जाती है हमारे सर पे, हर एक पे शक। मिसाल अब जैसे एक हलाल काम करता है मर्द, आपको उनके बारे में बिल्कुल किसी किस्म का शुबा नहीं, नेक लोग हैं, सोसाइटी में उनका अच्छा नाम है, कोई भी कपड़े का काम है, उनका खाने का काम है, मारूफ काम जो भी लोग करते हैं अमूमन प्रॉपर्टी के लेन देन का काम है। अब ये तीन चीज़ें ले ले, अब आप जाके पूछे अच्छा बताएं वो प्रॉपर्टी का कहीं नाजायज़ कब्जे की प्रॉपर्टी तो नहीं आप बेचते, अच्छा वो किसी गरीब औरत की ज़मीन तो नहीं हथिया लेता कोई, अच्छा वो जब आप बाउंड्री वॉल्स लिखते हैं हद तो उसमें कोई 1-2 इंच कम ज़्यादा तो नहीं करते, नहीं मुझे शक हो रहा है आपका कारोबार हलाल नहीं है। मुझे बताइए कि इस तरह का दीन पनपेगा? और ये जो कैफियत है ये हर एक की नहीं होती, इस तरह के सवाल लेना तो क्या मुआशरे में बदगुमानी नहीं फैलेगी? अब इसका ये भी नहीं मतलब कि सरासर कोई शराब बेच रहा है और आप कहते नहीं हम इस पे गुमान नहीं कर रहे। एक जुमला लिख लें, अल्लाह के नबी की एक बात ने मुझे सारी जिंदगी में बहुत फायदा दिया है, लोगों के जाहिर पर क्यास करो। और हम कदम कदम पे इसी को तोड़ते हैं, मसलन किसी से कोई हुई खता, फिर आपने उसको समझाया, फिर वो कहता है अच्छा मुझे माफ कर दे, अच्छा दिल से बात निकाल दे, आप कहते ठीक है माफ किया, नहीं कुछ नहीं मुझे लगता है आपने मुझे दिल से माफ नहीं किया, आप मुझे फ़ोन क्यों नहीं करते, आप मुझे मैसेज नहीं करते, आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा इसके आप मुझसे नाराज़ हैं, ये गलत बातें होती हैं। आप देखिए कि दूसरे बंदे को जिच करने वाला कोई सवाल दीन का सवाल नहीं हो सकता। चिकन की मिसाल ले लीजिए, किसी मुसलमान शरीफ घराने में आप गए, उन्होंने आपकी दावत की, चिकन पका, अब ये चिकन कौन सा है, ये सही जगह से लिया था, अच्छा वो जो कसाब था वो नमाज़ पढ़ता है, अच्छा वो मुशरिक तो नहीं, अच्छा वो तहारत का ख्याल करता है, भाई आप ना खाइए। अब ये सवालात बजाते खुद बुरे हैं। नंबर एक का आपने असूल अभी लिया ना, क्या लोगों के जाहिर पे क्यास कर। दूसरा असूल इससे भी मुझे लगता है खूबसूरत है, जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरे के लिए भी पसंद करो। आपके घर पे दावत है, आपके घर में मेहमान आए, वो एक एक चीज के बारे में पूछे, इसमें आपने ये नमक तो नहीं डाल दी, ये जीनो मोटर तो नहीं डाल दिया, ये मुर्गी धोई थी, ये वो जिस कसाब ने काटी थी उससे पहले उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा था, क्या करेंगे आप? देखिए ये इसका हरगिज़ नहीं मतलब कि इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इंसान की अहमियत है। बिला वजह का किसी का दिल तोड़ना, किसी के दिल पे बोझ डालना, ये अपनी जगह एक बहुत बड़ा गुनाह है। कई दफ़ा लोग हलाल हराम में इतने ऊपर जाते हैं कि इंसानी मामलात में तमीज़ भी नहीं रहती, और ऊपर से क्या कहते हैं हम दिल में नहीं रखते, जी मैं खरी खरी कहती हूँ, मैं खोटी नहीं हूँ। तो ये घरों में जितने मसले होते हैं ना सास बहुओं में और साथ रहने वालों में, ये खरे होने के ही होते हैं। आप तो अगले का दिल काट कूट के चले गए, अगला रोता रहे बेचारा, अब क्या करें? तो हमेशा याद रखे, अल्लाह से भी एक दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा अरिनल हक का हक वरज़ुकना इत्तबा हो, अल्लाह सच को सच कर दिखा दे और मुझे उसकी इत्तबा की तौफीक दे, वारिनल बातिला बातिला वरज़ुकना इज्तनाबा हो, अल्लाह जो बातिल है और बातिल में हराम भी है मकरूह भी है नजायज़ भी, अल्लाह मुझे पहले ही सूझ जाए। और मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ हम वेस्ट में रहते हैं, अव्वल तो गिनी चुनी चीज़ें ही जो कि पहले पता हो वही खाते हैं ना, किसी चीज़ में ज़रा सा शुबा पड़ जाए ना, मिसाल शुबे सुना के कुछ था खाई ही नहीं जाएगी। अल्लाह ने ऐसी फितरत और सलीमा वाली तबीयतें बनाई हैं, वो किसी वजह से उनका दिल ही नहीं करेगा खाने को। बाद में आप देखें या पढ़ें पूछें, हो सकता है उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डला हो कि जो नहीं खाना था, अल्लाह खिलाता भी नहीं। जितना आप केयरफुल होंगे अल्लाह ताला आपको उतना बचाएगा। अब इससे आगे बढ़कर एक और इशू जो है वसवसे की बीमारी। कई लोग इतने वसवसों का शिकार होते हैं कि वजू ही करते रहते हैं, 100-100 दफ़ा हाथ धोते हैं, नमाज का वक्त चला जाता है उनका वजू ही नहीं पूरा होता, तो ये टॉपिक उनके लिए बहुत अहम है। वसवसे की बीमारी से दो चार लोगों के वरा का बयान। वरा के बारे में चंद मामला ऐसे भी हैं जिनकी तरफ तवज्जो देना फजूल है, दूसरे अल्फाज में इनकी तरफ इल्तफात करना यानी झुकना या इसका वक्त देखना बेसूद है, क्योंकि इससे वसवसा करने वालों के वरा में गिरदाना जाता है। मसलन बात वाजे होगी, यानी कुछ लोग जिनको वसवसों की बीमारी हो जाए ना उनकी तरफ नहीं इतना देखना चाहिए, मतलब उनकी बातों को इतना नोटिस नहीं करना चाहिए। इसकी मिसाल वही है जिसको इमाम इब्ने हजर रहमहुल्ला ने फतहुल बारी में जिक्र किया है, फरमाते हैं कि मुवस्वसीन कौन होते हैं, मुवस्वसीन जिनको वसवसे बहुत आते हैं, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, और आप वहां पढ़ते हैं अल खन्नास शैतान का नाम है वसवसे डालने वाले के, तो मुवस्वसीन के वरा में से ये है कि कोई शख्स शिकार का गोश्त खाने से महज इस शक की बिना पर इनकार कर दे कि कहीं ये शिकार किसी शख्स की मलकियत ना हो और इसकी कैदे तसरुफ से निकल भागा हो, या ये कि कोई किसी मजहूल शख्स से अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खरीदने में महज इस खदशे की बुनियाद पर लईता व लाल से काम ले कि पता नहीं ये हराम है या हलाल, जबकि वहाँ कोई भी ऐसा करीना मौजूद ना हो जिसकी हुरमत पर दलालत करता हो, तो ये मुवस्वसीन का वरा है। ये भी बात वाज़ है। अब हमारे यहाँ शिकार तो होता नहीं, उसको तो हम एक साइड पे कर देते हैं। बस आपने अपना सेलफोन बेचा, लेने वाला आपसे 20,000 में ले गया। आप कहते पता नहीं ये 20,000 हराम के थे कि हलाल के, पता नहीं किधर से आया। या इसका ऑपोजिट, आपने एक सेलफोन खरीदा, कोई ज़रूरतमंद था, वो सेलफोन बाजार में 20,000 का मिलता है, वो आपको 15 का दे गया। आप कहते चोरी का होगा, पहले तहकीक कर लीजिए कि चोरी का तो नहीं बाकी उसने दिया। या बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़, सील पैक चीज़, कोई आके आपको कहता है ये 5,000 ही की ले ले, तो भी आपको फिक्र होनी चाहिए कि इतना सस्ता क्यों बेच रहा है। तो मतलब जो चीज़ अपने शवाहद से, अपने कराइन से दिखा रही है, उस पे तो कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन आम हालात में बहुत ज़्यादा वसवसों में नहीं पड़ना चाहिए। वसवसा करने वालों के वरा की एक दूसरी मिसाल, जिसको इमाम ज़रकशी रहमहुल्लाह ने जिक्र करते हुए यूं फरमाया, मिसाल के तौर पर कोई शख्स कसम खा ले कि अपनी बीवी के हाथ की बनी हुई या पिरोई हुई चीज़ वो ज़ेब-ए-तन नहीं करेगा, यानी अपनी बीवी के हाथ की बुनी हुई या पिरोई हुई चीज़ ज़ेब-ए-तन नहीं करेगा। आजकल तो इशू कोई नहीं रहा, ना बीवियाँ बुनती हैं ना पिरोती हैं, लेकिन जब कभी बीवियाँ सुघड़ होती थी तो मर्दों के कपड़े सीती होंगी, उस दौर की मिसाल है। अब इसकी बीवी ने अपने हाथ से कोई चीज़ सी कर या पिरो कर या कढ़ाई करके बेच दी और इसकी कीमत अपने शोहर को हदिया कर दी, तो इसके खाने में किसी किस्म की कराहत नहीं, बल्कि इसका ना खाना वरा के खिलाफ है। इसके ना खाने को वरा नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये तो शैतानी वसवसा है। बात समझ गए? यानी उसने कहा कि तुम सियोगी पिरोगी, मैं नहीं पहनूंगा, कसम खाई है ना। अब कसम पूरी करनी होती है, ठीक है, अगर सही बात है, कोई हराम की बात नहीं थी। अब बीवी ने कोई चीज बनाई, उसको बेचा, जब बेचा तो वो पैसों का अपने शोहर को तोहफा दे दिया या वो पैसे ही दे दिए, तो फिर ये कसम का इसके ऊपर इत्तलाक नहीं होगा। अब देखिए हदीस में आता है कि तबाह हो गए मीन मेख करने वाले। छोटी-छोटी चीज़ों पे मीन मेख करके बाज़ दफ़ा इंसान अपनी नज़रों में बहुत नेक बन जाता है, लेकिन दूसरे को गुनाहगार समझ जाता है। इन चीज़ों से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों से बचेंगे, उतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपके दिल को खोलेगा और दुआ किया करे। और देखिए कुरान में एक और बहुत ही प्यारी आयत है ना, सूरह तगाबुन की है कि वमन युमिन बिल्लाही यहदी कल्बह, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके दिल को तकवा देगा, अल्लाह उसको खोल देगा। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके दिल को राह देगा। अल्लाह हू अकबर। जितना ज़्यादा आपका मेरा दिल इस चीज़ पर जमता जाएगा, उतना ज़्यादा हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करते जाएंगे। ना राह जाते भोले बनना और ना अगले को गुनाहगार करना। कुछ लोगों की नेकी दूसरों का गुनाह बन जाता है, इसलिए तबलीग में ख़ास तौर पे बहुत केयरफुल रहें। चलिए ये हो गया वसवसा करने वालों का तकवा भी। अब एक और है बहुत ही बारीक और नाजुक नौयत का वरा। वरा के बारे में चंद मसाइल ऐसे भी हैं जो बहुत ही बारीक बीनी का तकाजा रखते हैं, यानी मुतकाजी हैं। हर शख्स इसको नहीं संभाल सकता, यानी इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इनका मामला बड़ा ही नाजुक और दकीक होता है। इमाम इब्ने रजब हम्बली रहमहुल्ला फरमाते हैं, चंद मसाइल ऐसे भी हैं जिनका समझना और इनकी तरफ तवज्जो मबजूल करना ज़रूरी है। लिहाजा एक मोमिन को इसके फहम और इदराक की कोशिश करनी चाहिए। वो शुबहात से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल में बारीक बीनी से काम लेने और इनके बारे में तवक्कुफ़, यानी एक स्टॉप लेना, तवक्कुफ़ इख्तियार करने का मामला है। ये तदकीक, यानी बहुत ही बारीक दिक से, और बारीक बीनी इन्हीं के बस में होती है जिनकी हालत ईमानी इस्तकामत और साबित कदमी का आईनादार हो, जिनके अहवाल व कवायफ दुरुस्त हों और जिनके अमाल तकवा और वरा का जीता जागता नमूना हो। जहाँ तक इन लोगों का मामला है जो ज़ाहरी तौर पर हुरुमात की पामाली करते हैं और इसकी कोई परवाह नहीं करते, इसके बाद दकीक से दकीक शुबहात से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों से तवर्रो यानी परहेजकारी इख्तियार करने का दावा करते हैं या इसका अज़म और इरादा रखते हैं। ये चीज़ इनके बस से बाहर है। हकीकत में ये इसके तहम्मुल की ताकत नहीं रखते बल्कि इनकी तगोदो इनके लिए ला हासिल है। हकीकत में ये वरा की पेशानी पर बदनुमा दाग लगाना है, जैसा कि इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने उस शख्स को जवाब देते हुए, जबकि इनसे अहले इराक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में से किसी शख्स ने सवाल करते हुए मच्छर के नाहक खून कर देने के बारे में पूछा था, इरशाद फरमाता है, ये लोग मुझसे मच्छर के खून के बारे में सवाल कर रहे हैं जबकि उन्होंने हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया। मैंने अपने कानों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि दुनिया में ये दोनों मेरे लिए चमकते दमकते खुशबूदार फूल हैं। यानी अब तुम ये पूछते हो कि अगर मच्छर को मारें और उसका खून निकले तो ये अमल हलाल है तो हराम, तो इंसानों को मारते हो। आज भी है ना कि मच्छर फूक फूक कर मारते हो और हाथी और घोड़े निकल जाते हो, तो ये भी कई जगह आप देखेंगे ऐसी चीज़ें होती हैं। इस तरह इमाम अहमद रहमहुल्ला से जब उस शख्स के बारे में पूछा गया जिसने सब्जी खरीदी हो, अब देखिए ये बारीक चीज़ें हैं ना, डे टू डे हर दिन में कई बार आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये इल्म सीखने के बाद हमारा सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है, समझ नहीं आता ये ठीक है कि नहीं, किससे पूछूं, क्या बताऊं। अब इल्म भी पूरा नहीं होता, जज्बे ज़्यादा होते हैं, शुरू में इल्म थोड़ा होता है, वक्त के साथ इल्म ज़्यादा हो जाता है तो जज्बे ठंडे हो चुके होते हैं, इल्ला माशाल्लाह। तो आप इस सारी चीज़ को सामने रखिए। एक शख्स है जिसने सब्जी खरीदी और वो बेचने वाले से यानी बाए से सब्जी या साग पत्तों को बांधने की डोरी का सौदा करे, तो इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने सवाली से पूछा, ये क्या खेल बना रखा है, ये किस किस्म के मसाइल तुम पूछ रहे हो। यानी सब्जी खरीदी है ना, तो उसको कहता है जरा कोई डोरी भी है जिससे इस सब्जी को बांध सकूं, यानी साग है उसके पत्तों की डोरी है, क्या ये भी तुमसे मैं खरीद लूं। वो तो साथ ही आ रही है उसके, क्या पता चला कि बहुत क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। तो लोगों ने जवाब दिया कि सैयद ना इब्राहिम बिन अबी नईम रहमहुल्ला, ये उनका असल नाम था, यानी एक बुजुर्ग है, उनके बारे में ये बात इमाम अहमद को बताई गई कि सैयद ना इब्राहिम बिन अबी नईम इस किस्म के मसाइल बयान फरमाते हैं। यानी कुछ दीनदार होते हैं, उनकी शोहरत होती है कि वो इस तरह की बारीकियाँ बड़ी खोलते हैं। तो हज़रत इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने साहिल को जवाब दिया कि अगर इब्राहिम नाइम रहमहुल्लाह ऐसा करते हैं तो बजा है, ये इन्हीं के शायान शान बात है, मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था। मुराद ये कि उन्होंने उनकी तारीफ पर डाल दी, ये नहीं कहा कि वो तो ऐसे ही है बस ये मसले करते, नहीं कह रहे भाई वो करते हैं तो वो कर सकते हैं, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है। बात का खुलासा क्या है कि वरा के मसाइल में से चंद दिक्कत तलब बारीक मसाइल भी हुआ करते हैं जिनकी गुत्थियाँ सुलझाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, बल्कि हर कसो नाकस हर किसी में आप कह लें इसमें तवर्रो का पहलू इख्तियार नहीं कर सकता, एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। अगर गुनाहगार और फासिक व फाजिर लोगों ने इसमें वरा नुमाई की कोशिश की, दिखावा कि हम बड़े नेक हैं, हैं गुनाहगार फासिक हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए ऐसी बातें करें, असल में डर बड़ा लगता है, फिर डर लगता है तो छोड़ दीजिए। छोड़ते कुछ नहीं, काम अपना नहीं छोड़ना और बाकी चीज़ों के पीछे अपने आप को डाल देना। याद रखिए अपनी नेकी को किसी का गुना ना बनाइए, आपकी नेकी दूसरे का गुना बन जाए या आपके लिए बहुत बड़ा जुल्म होगा। जितना ज़्यादा आप अपने आप को देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि आप असल में कितने नेक हैं। सबसे बड़ा मुफ्ती आपके मेरे अंदर है। जितना ज्यादा आप अपने आप को क्रिटिकल देख सकते हैं, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आलिम मुफ्ती भी नहीं आपको ऐसे देख सकता। तो खुलासा क्या निकला, अल्लाह से दुआ किया करें कि मेरे मालिक मेरे पे रहम फरमा, मुझे ऐसा नेक ना बना कि मेरे साथ रहने वाले सारे खुद को गुनाहगार समझें, मुझे तकवा के नाम पे वरा के नाम पे ऐसे हरकतें करके दूसरों को परेशान करने वाला ना बना। देखिए दीन की खूबसूरती बैलेंस्ड वे, आप नॉर्मल बैठे हैं, आप सारा दिन बैठे हैं, आपको इतनी थकन नहीं होगी, आप ज़्यादा झुक के बैठे थोड़ी देर बाद आपकी कमर दुख जाएगी, और आप बिल्कुल इसी के ऑपोजिट खड़े ही रहें तो भी ऐसा ही होगा। तो जितना ज़्यादा दीन को सहूलतों के साथ लेंगे, अल्लाह के खौफ के साथ लेंगे तो फ़ायदा होगा। तो क्या पता चला कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हर एक नहीं समझा सकता और हर एक ये इख्तियार कर भी नहीं सकता। वरा का दर्जा अगर दिखावे का तकवा है, वरा है तो ये वबाले जान होगा, इस किस्म के मसाइल में बड़ी बारीक बीनी और दिक्कत नज़री की ज़रूरत होती है जो इन फासिक व फाजिर लोगों के बस से बाहर है, और इस बारे में वरा की अंजामदही इनके लिए बईद अस कयास मामला हुआ करता है। यानी देखे ना, एक बंदा, मिसाल देती हूँ आपको, नमाज की बात करते हैं, फ़र्ज ही नहीं पढ़ता, 5 वक्त की फ़र्ज नमाज जुम्मा नहीं पढ़ता। आप उसे जाकर अब तहज्जुद की बात पूछेंगे, तहज्जुद के फवायद बयान करेंगे, नहीं करेंगे, बस यही बात है। जितना ज़्यादा आपके अंदर ये शऊर और समझ आती जाएगी, बल्कि आपको लोगों को रुख्सत देनी चाहिए, बस फ़र्ज़ पे आ जाओ, अच्छा चलो वक्त पे पढ़ लो, अच्छा जमात, आप जमात की नमाज और मस्जिद की नमाज को एक शर्त करार दे दें उस बंदे के लिए जो घर में उठकर बिस्तर से उठ कर वजू करके नमाज नहीं पढ़ता, तो ये उसके लिए ज़्यादती होगी। हमेशा लोगों को स्लो एंड स्टडी पे लीजिए, रिलैक्स करके लीजिए। तो फिर क्या सीखा टॉपिक? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पूरा हुआ। खुलासा करते हैं, यानी खात्मा क्या है कि वरा यानी परहेजकारी को सिरे से छोड़ देना या तर्क कर देना, इंसान के लिए दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से हद से ज़्यादा खराबियों और बुराइयों बल्कि बहुत बड़े फसाद का पेश खेम है। यानी ना दीन के मामले में ना दुनिया के, किसी में तकवा को छोड़ना नहीं है। सुहैल बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, जब कोई बंदा वरा और परहेजकारी करना छोड़ देता है और अपने अमाल की अंजामदही में तवर्रो से काम नहीं लेता, तो इसके हजार जवारे गुनाहों की भूल भलाइयों में भटकना शुरू कर देते हैं और इसका दिल शैतान के चुंगल में जाकर फंस जाता है और वो इसी के कब्ज़े तसर्रुफ में काम करना शुरू कर देता है। बहुत बड़ी बात है। अब देखिए कि हमें अपने आप को वरा के दर्जे पे लेके जाना है ना। अब आखिरी नशिस्त में तो चूंकि हमने एक्सेप्शनल केसेस देखे हैं ना, लेकिन अगर आप शुरू के टॉपिक से लेके यहाँ तक पहुँचे तो वरा कितनी बड़ी दौलत है। नुकसान तो कुछ नहीं होगा ना वरा से, कुछ लज्जतों से आप महरूम हो सकते हैं, कुछ चीज़ों से पीछे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप छोड़ दें, या ऐसे कि आप सफाई करना छोड़ दें, एक चीज़ बिखरी फिर दूसरी बखेरे, थोड़ी देर बाद आपकी जगह ही नहीं बचेगी उस जगह पे। तो गुनाहों को करते ही जाना, ये कितना खूबसूरत जुमला है ना, कि गुनाहों की भूल भलाइयों में भटकना शैतान के चुंगल में दिल को बसाना है। और फिर बंदा वही बात है कि नुकय्यिस लहू शैतानन, अल्लाह कहते हैं सूरत ज़ुख़रुफ़ है कि वो मैयाश वन ज़िक्र रहमान, जो रहमान के ज़िक्र से ज़रा सा इधर उधर होता है हम उसके दिल पर शैतान को मुकर्रर करते हैं। फिर बंदे को किसी गुनाह के करते में शर्म नहीं आती, हया ख़त्म हो जाती है। कभी कभार तो बंदे का अदम तवर्रो यानी तवर्रो इख्तियार ना करना इसके अमाले सालेहा को रायगां करने का बायस बन जाता है। मुराजे के लोग अमल साले बहुत करते हैं, नेकियां बहुत करते हैं, मस्जिदों में कारपेट बिछाएंगे और पानी पिलाएंगे और बहुत कुछ करेंगे, लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते। इस बारे में यास बिन मुआविया रहमहुल्ला इजहार ख्याल करते हुए फरमाते हैं, हर वो दीन और मजहब जिसकी बुनियाद अदम वरा पर हो, खसो खाशाक की तरह यानी सूखे हुए पत्ते टहनियाँ, गोया कि इसकी दो कौड़ी की हैसियत नहीं बल्कि बेकार और बेसुध है। हम तो कहते हैं कि वरा को तर्क कर देना उम्मत इस्लामिया के फसाद और बिगाड़ का पेश खेम है और आमाले सालेहा की बरकत छिन जाने का सबब है। इसीलिए साहल बिन अब्दुल्ला का फरमान है कि लोगों में अजीबो गरीब चीज़ों का सुदूर यानी होना, सुदूर कहते सदर यानी कोई काम करना, हैपन्स रूनमा होता हुआ नजर आता है। इनके फरीजा वरा से पहलू तही की वजह से खुशी व खुदू की दौलत से नफा अंदोजी की सलाहियत सल्ब कर ली जाती है। यानी आप दूसरे लफ्जों में कह लें कि जो वरा से पीछे होते हैं ना, तो उनका खुशू और खुदू ख़त्म हो जाता है, जो अल्लाह इसके बदले में ही देता है। नमाज सब पढ़ते हैं, लेकिन कुछ की नमाज खुशू वाली होती है और कुछ की बस फ़र्ज़ पूरे करने वाली होती है। खाली दावा करने और शही बिगाड़ने का नाम वरा नहीं है कि इंसान महज तवर्रो का दावा कर ले और वरा करने वालों में शुमार होने लगे, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि दावे के साथ इस राह में जिद्दोजहद और कोशिश और अमल करते रहने की ज़रूरत दरपेश होती है ताकि वरा की दौलत से सरशारी नसीब हो जाए और बंदे के दिल में वरा जागजी हो जाए, अल्लाह सुबहाना तआला की हराम करदा चीज़ों से दूर रहे। बग़ैर इसकी मोहब्बत का दावा करना बराए दावा है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये तो सरासर झूठ और दरोग गोई है यानी झूठ बोलना और दिल को बहलाने के लिए ऐसा गुमान करना है। हातिम रहमहुल्ला फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह के हराम करदा यानी महारिम से रुके यानी इज्तनाब किए बगैर मुतवर्रे होने का दावा करे वो झूठा और कज़ाब है। यानी हराम वही है जिसको अल्लाह ने हराम किया, आप वो तो करते जा रहे हैं और बज़ाहिर आपका वजू इतना लंबा हो रहा है, या आप बाहर लोगों के सामने बहुत नेक बन के दिखाते हैं अपने आप को, तो ये ठीक नहीं। लिहाजा एक मोमिन को चाहिए कि इसके नज़दीक दीन के एतबार से अहम तरीन चीज़ इसका वरा और तकवा हो, और हर उस चीज़ में अल्लाह के तकवा का इस्तेमाल और इसके मुराकबे का इस्तेहदार पेश नज़र रहे, जिसके करने का इसने हुक्म दिया और जिसके करने से शारे हकीम ने मना किया है। दरअसल मोमिन का ये तुर्रा इम्तियाज़ होना चाहिए। किसी अरबी शायर ने क्या खूब कहा है, तकवा की पाबंदी करो और तबर्रो इख्तियार करने वाले बनो, और आजमाइश पर जम के सब्र करना अपनी आदत बना लो, और दीन के बारे में बेदार मगजी यानी खुले जहन से, ओपन माइंड से काम लेने वाले बन जाओ, तो वो शख्स लायक सद सताइश है यानी 100 दफ़ा उसकी तारीफ की जाए, जिसके दिल का शुआर वरा और तकवा हो, और जिसके दिल में वरा और तकवा की कंदीले फरूजा हों यानी दिल में वरा रोशन हो। अल्लाह हमारे मामले को हिदायत की राह पे गामजन फरमा दे, और तकवा को हमारे लिए ज़ादे राह बना दे, और जन्नत को हमारा मर्जे और हमारी अमाजगाह मुकर्रर फरमा दे, और हमें ऐसे शुक्र की तौफीक अता फरमा जो तुझे मुझसे राजी और खुश कर दे। ये दुआएं मांगी है ना, ये दुआएं देखिए दिल से निकलती हैं तो फिर अल्लाह कबूल भी करता है। और हमें ऐसा वरा और तकवा अता फरमा जो हमको तेरी मासीयत से रोके और दूर रखने का जरिया साबित हो। नबी सल्लम की दुआ में एक दुआ भी है ना कि अल्लाह मुझे अपनी वो खशियत दे जो मेरे और मेरे गुनाहों के बीच में रुकावट बन जाए। और दुआ नमाज में तो हम पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया या कमा बात बैनल मशरिकी वल मगरिब। फिर हम दुआ करते हैं कि ऐसी खुश अखलाकी की दौलत से सरशारी नसीब फरमा जिसके साथ लोगों के दरमियान हर दिल अजीज बनकर जिंदगी गुजारूं, और हमें ऐसी अकल सलीम की दौलत से माला माल फरमा दे जो कि मेरे लिए सूदमंद और नफा बख्श साबित हो। अल्लाह हमें हिदायत याफ्ता और हिदायत की राह पर गामजन लोगों में शुमार फरमा ले, गुमराह लोगों या गुमराही के रास्ते पे गामजन लोगों में हमें न बना, और हमारे तमाम के तमाम गुनाहों को बख्श दे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनेमतिही ततमस्सालिहात वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीजिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही अजमाइन। अल्लाह ताला हम सब को भी बेहतरीन तरीके से वरा पे रखे। अब एक अपना छोटा सा जायज़ा लेते हैं अपने फहम और इदराक का इम्तिहान लेकर, इसके बगैर बात नहीं बनती ना। तो आप देखिए कि जो मौजू हमने पूरा किया दूसरे टॉपिक्स की तरह सवालात को ज़रा सा देख लेते हैं, यानी इस मौजू से मुतलिक सवालात को अगर दो मरहलों में रखते हुए देखें तो कैसे हैं। सवालात की एक किस्म वो होती है जिनका जवाब फ़ौरन देना है, इस किस्म के सवालात को पहले मरहले में रखा गया है, और दूसरी किस्म वो है जो बहस व नज़र और गौर व फिक्र का तकाजा करती है, इस किस्म के सवालात दूसरे मरहले में है। तो चलिए ये एक पेपर है आपका, आप इसको हल कर सकें। पहला मरहला क्या है, वराए वाजिब की तारीफ क्या है, सोचिए ज़रा आपको याद है भला क्या था। वरा के चार मरातिब, इनका मुफस्सल जिक्र करें, और तमाम मरातिब, मरातिब से मरात मरतबा दर्जे रैंक्स, तमाम मरातिब में से हर मरतबे की तारीफ करें। इन अहादीस में से 3 अहादीस का जिक्र करें जो वरा की फजीलत में वारित हुई हैं। कज़ा और अदलिया के बारे में वरा शर्त क्यों है। सालेहीन और अल्लाह वालों के वरा के किस्सों में से बतौर नमूना 3 किस्सों का जिक्र फरमाएं। वरा के 5 फवाद का तذکرہ कीजिए। वरा में गलूफ से क्या मुराद है, इसकी चंद मिसालें जिक्र करें। इमाम इब्ने कय्यम ने वरा की क्या तारीफ की है। वरा के बारे में लोगों की इकसाम का जिक्र करें। मुवसवसीन यानी वसवसे की बीमारी में मुबतला लोगों की मिसालों में से 2 का तذکرہ कीजिए। अब ये सारे सवाल बने हुए आप ओपन बुक करके लिखें, यानी असाइनमेंट भी यही है, क्योंकि ये सवालात जब आप बुक में से ढूंढेंगे तो फिर ज़्यादा आपका जहन इंशाल्लाह खुलेगा। दूसरे मरहले के सवाल जो इस्तिम्बाती अंदाज़ के, इस्तिम्बात क्या होता है, जैसे वो कुएं में से पानी निकालते हैं ना उसको नबता कहते हैं, उसी से ये लफ्ज़। वरा की हकीकत और असलियत क्या है, बहस और मुबादसे से दूरी और अलहदगी को वरा के हसूल के असबाब में क्यों कर शुमार किया जाता है, वरा शुबहात से अलहदगी का क्यों कर जरिया बन जाता है। बाज़ इन असबाब और वसाइल का जिक्र कीजिए जो वरा के हसूल में मददगार की हैसियत रखते हैं, मगर इस बुकलेट में यानी एक पूरा जो टॉपिक था असबाब और वसाइल के अलावा हों। बस इन किताबों का जिक्र करें जो कि मौज़ूए वरा के बारे में मर्जे, मर्जे कहते जिसकी तरफ रुजू किया जाए, हैसियत रखती हों। इस किस्से का तذکرہ करें जो इस बात का बैयन सबूत हो यानी वाज़े कि वरा जिस तरह खुफिया तौर पर होता है, इसी तरह एलानिया तौर पर इसका वजूद मुमकिन है। बस मुबाह चीज़ों से कैसे वरा बरता जा सकता है? क्या मुस्लिम के लिए ये बात काफ़ी है कि वो दिल से वरा का काम अंजाम दे और बस इसकी वजाहत करे? अल्लाह ताला आसान फरमाए। व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही अजमाइन। अल्लाह ताला मुझे आपको बेहतरीन तरीके से वरा की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।